दीवा के पेरेंट्स के कहने पर डॉक्टर नील दीक्षित दीवा से मिलने के लिए उसके पास स्पेलिंग आ चुका था। दीवा को अच्छे से पता था कि नील को उसके पास क्यों भेजा गया है। फिलहाल दीवा ने कोई फैसला नहीं लिया था, पर हाँ, उसने नील को शिव का ख्याल रखने के लिए उसके पास छोड़ दिया था। थोड़ी ही देर में शिव और नील आपस में अच्छा घुल मिल गए थे। नील को दीवा के पास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो अपने तरीके से दीवा का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। शाम को नील और शिव की जिद करने पर दीवा उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी। उस समय वही इकलौता रेस्टोरेंट खुला था जहां आर्यांश काम करता था। दीवा मन ही मन दुआ कर रही थी कि आर्यांश वहां मौजूद ना हो। उसके आसपास ना दिखने पर उसने राहत की सांस ली। आर्यांश उस वक्त किचन एरिया में था और वहां के मैनेजर ने उसी को ऑर्डर लेने के लिए भेजा था। दूर से जब आर्यांश ने दीवा को नील के साथ देखा तो उसके भीतर एक आग सी जल रही थी। जब से वो दोबारा दीवा से मिला था, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो दीवा की जिंदगी में किसी तरह का दखल न दे, पर आज उसे किसी और लड़के के साथ देखकर आर्यांश को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सबसे कीमती चीज कोई उससे छीनना चाहता हो। मुझे खुद को शांत रखना होगा, आर्यांश मन ही मन बोला। मेरा अब उस पर कोई हक नहीं है। अगर मैंने अपने गुस्से में कोई भी गलती की तो वो मुझसे और नाराज हो जाएगी। सुबह मैंने इसे कहा था कि हमारे बीच सब खत्म हो गया है, तो अब दीवा को किसी और के साथ देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऑर्डर लेने के बजाय आर्यांश वहीं पर खड़ा उन सबको देख रहा था। तभी मैनेजर ने पीछे से आकर हल्की सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा, आर्यांश, मैंने तुम्हें नए आए कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए कहा था, तुम यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? मैं बस जा रहा था, आर्यांश ने जवाब में इतना ही कहा और तुरंत अपने कदम दीवा की टेबल की तरफ बढ़ा दिए थे। वहां जाते ही आर्यांश नरम लहजे में बोला, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आर्यांश ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और उसका पूरा ध्यान नोटपैड की तरफ था, लेकिन आर्यांश की आवाज़ सुनते ही दीवा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसे इस वक्त काफ़ी अजीब लग रहा था। आप अपने रेस्टोरेंट की 4 बेस्ट वेज डिशेज ले आइए, नील मुस्कुराकर बोला और फिर उसने शिव से पूछा, बेटा आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए? शिव ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया था। वहीं दीवा हिचकिचाते चेहरे के साथ आर्यांश की तरफ देख रही थी। आर्यांश जिस तरह से उसे इग्नोर कर रहा था, ये देखकर दीवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऑर्डर लेने के बाद वो तुरंत वहां से चला गया। वहीं दीवा उसे जाते हुए देख रही थी। वो मन ही मन बोली, कहीं आर्यांश को ये तो नहीं लग रहा कि मैं और नील साथ में हैं? आई होप कि वो मुझे नील के साथ देखकर गलत ना समझ ले। दीवा की नज़रें लगातार किचन एरिया की तरफ टिकी हुई थी जहां पर उनका ऑर्डर लेकर आर्यांश गया था। उसे इस तरह खोए हुए एक दिशा में देखता पाकर नील ने हल्का सा हंसकर सिर हिला दिया था। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है, तभी तुम्हारी नज़रें वहीं पर टिकी हुई हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेटर तुम्हें पसंद आ गया हो? वैसे दिखने में काफ़ी हैंडसम था, नील हल्के लहजे में बोला, लेकिन उसकी ये बात दीवा को पसंद नहीं आई। दीवा ने तुरंत नील की तरफ घूरते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे कोई पसंद नहीं आया है, ना ही वो और ना ही तुम। नील ने अपने सीने पर हाथ रखा और ड्रामेटिक वे में कहा, अब तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तो शिव तक को कन्विंस करने वाला था कि मैं उसका पापा बनने वाला हूँ। नील ने मुस्कुराकर शिव की तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में पूछा, शिव बेटा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, आप अच्छे हो, पर मुझे मम्मा को इरिटेट करने वाले लोग पसंद नहीं है, शिव ने हंसकर कहा, तो नील का मुंह बन गया था। शिव और नील आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, पर दीवा का ध्यान अभी भी वहीं पर था। कुछ देर बाद खाना लेकर आर्यांश के बजाय कोई और वेटर आया। दीवा का यही मन किया कि वो वहां से उठकर आर्यांश के पास जाए और उसे बताए कि उसके और नील के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो वो इस तरह उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। उनका खाना आने के बाद भी दीवा ने काफी कम खा रहा था। रेस्टरूम जाने के बहाने दीवा ने आर्यांश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मिला नहीं। खाना हो जाने के बाद नील अपने होटल के लिए निकल गया था, तो वहीं दीवा शव के साथ घर जाने लगी। जैसे ही दीवा अपने घर के पास पहुंची तो उसने देखा आर्यांश उससे थोड़ी ही दूरी पर चल रहा था। दीवा ने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला और शिव से बोली, अच्छा ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, डोर अंदर से बंद कर लेना और सिर्फ मेरे लिए खोलना। वो जगह काफी सुरक्षित थी। ऊपर से दीवा जिस घर में रहती थी वो एक बड़ी सी बिल्डिंग का हिस्सा था, कोई इस तरह वहां ऐसे ही नहीं घुस सकता था, इसलिए दीवा बेफिक्र होकर शिव को अकेले घर छोड़ सकती थी। शिव को अंदर जाने का बोलकर दीवा जल्दी से दौड़कर आर्यांश के पीछे गई। जैसे ही आर्यांश मुड़ने वाला हुआ, दीवा पीछे से तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो और क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो आर्यांश कपूर? दीवा की आवाज़ सुनकर आर्यांश के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वो बेहद धीमी आवाज में बोला, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो डॉक्टर गोयंका, जबकि मैंने तुम्हें सुबह अच्छे से समझाया था कि मुझसे दूर रहो। वैसे ही मेरा खुद पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल है, क्यों तुम अपनी और मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने पर तुली हुई हो? आर्यांश जितना खुद को दीवा से दूर जाने के लिए समझाता था, दीवा उतनी ही उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। आर्यांश चुपचाप वहां खड़ा था और उसने अभी तक दीवा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। दीवा चलकर उसके थोड़ा पास आ चुकी थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, मेरी बात का जवाब दो, तो मुझे उस तरह क्यों देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की हो? तुम मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते? अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है तो सीधा मुंह पर कहो, इस तरह इग्नोर गेम मेरे साथ मत खेलो। आर्यांश ने गहरी सांस ली और तुरंत दीवा की तरफ पलटा। वो सख्त आवाज में बोला, क्या हमारे बीच कोई रिश्ता है? हाँ, दीवा चौंकते हुए बोली। मैंने पूछा, क्या हमारे बीच कोई रिश्ता है? इस बार आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा। दीवा के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बस उसकी नजरें नीचे हो गई थी। आर्यांश ने सिर हिलाया और उसी सख्ती के साथ कहा, क्या तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कर रही हो? चीजें भूल गई या मुझे दोबारा याद दिलानी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ? मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया था, तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को रोड पर ला दिया था और उसके लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। याद है ना, मेरी वजह से हमने अपना बच्चा? आर्यांश बोलते हुए रुक गया था, क्योंकि उसके आगे के शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी अपनी पलकों को झपकाने लगा था कि उसके दिल का दर्द आंसुओं के रूप में बाहर ना आ जाए। वहीं दीवा की पलकें भीग चुकी थीं। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आर्यांश ने गहरी सांस ली और खुद को सामान्य करके बोला, मुझसे दूर रहो दीवा, मुझे नहीं पता वो क्या वजह है जिसके कारण तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है या तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और अब और नहीं देना चाहता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो करना है करो, जिसके साथ जाना है जाओ, पर मेरे सामने मत आना। इतना कहकर आर्यांश तुरंत दूसरी तरफ पलट गया था। वो धीमे कदमों से चलकर जाने लगा तो वहीं दीवा पीछे से चिल्लाकर बोली, तो इस वजह से तुम मुझसे दूर हो कि कहीं तुम मुझे हर्ट ना कर दो?
आर्यांश रुका और उसने पलटकर हैरानी से दीवा की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीवा चाहती क्या है। उनका रिश्ता दीवा की मर्जी से ही खत्म हुआ था और अब आर्यांश उसे दूर रह रहा था तो वो इस बात की शिकायत कर रही थी कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। बताओ मुझे, दीवा ने अपना सवाल दोहराया, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं फिर से तुम्हारी लाइफ में आई तो फिर वही चीज़ दोबारा होगी? मैं तुम्हें बता दूँ, मैं अब वो पहले वाली दीवा नहीं रही हूँ। अब तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो। ये मेकओवर तुम्हें मुबारक हो, आर्यांश तंज भरे लहजे में बोला। वो जानता था जब तक वो दीवा के सवाल का जवाब नहीं देगा तब तक वो उसे जाने नहीं देगी। आर्यांश कुछ पल रुका और बोला, आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम अपने घर वापस लौट जाओ। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन हाँ, तुम्हें इस तरह बुरे हालात में देखकर मुझे अजीब लग रहा है। मैंने तुम्हें हमेशा एक लग्जीरियस लाइफ बिताते देखा है और अब तुम? दीवा बोलते हुए रुक गई थी। अब मैं क्या? आर्यांश ने हैरत भरे लहजे में पूछा। दीवा को सीधे सीधे ये बोलते हुए अजीब लग रहा था कि आर्यांश की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो उसे इस तरह वेटर के तौर पर काम करते हुए नहीं देखना चाहती। आर्यांश को जवाब देने के लिए दीवा ने कुछ पल सोचकर सही शब्दों का चुनाव किया और कहा, सुमन माँ को अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें ठंड सूट नहीं होती है, तुम्हारी लाइफ यहाँ बहुत मुश्किल है और इतना काम करके भी कितना कम कमा पाते हो, मेडिकल बिल तक तुम टाइम पर नहीं दे पाते हो। अच्छा, तो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं दो लोगों का खर्चा भी ठीक से नहीं निकाल पाता? आर्यांश तंज भरे लहजे में हंसकर बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो दीवा उसकी सुन नहीं रही थी, उल्टा न जाने उसके बारे में क्या सोचकर बैठी थी। आर्यांश चिढ़ते हुए बोला, किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं उस होटल में वेटर हूँ क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट परस्यू कर रहा हूँ। मेडिकल बिल टाइम पर नहीं दे पाया क्योंकि देने का टाइम नहीं था, ना कि पैसे नहीं थे इस वजह से। अब तुम्हारा इनडायरेक्टली मुझे गरीब कहना हो गया हो तो जाओ यहाँ से, शिव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल लड़की हो कि एक बच्चे को अकेले घर छोड़कर मुझसे बहस कर रही हो और ऊपर से बोलती हो कि तुम बदल गई हो। सच कहूँ तो पहले वाली दीवा बेहतर थी, जो सही गलत का फ़र्क पहचानती थी। मेरे तुम्हें हर्ट करने पर मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, ना कि इस तरह यहाँ रोड पर आधी रात को खड़े होकर ये पूछती कि मैं उसे इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। दीवा को अच्छा खासा सुनाने के बाद आर्यांश दूसरी तरफ पलट गया था। इस बार वो किसी भी हाल में दीवा के कहने पर नहीं रुकने वाला था। आर्यांश ने इतना सब कुछ कहा था, लेकिन दीवा का दिमाग अभी भी एक शब्द पर अटका हुआ था। दीवा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो दौड़कर जल्दी से आर्यांश के सामने गई। तुम्हें कैसे पता उसका नाम शिव है? दीवा ने आर्यांश की आंखों में आंठें डालकर सख्त आवाज में कहा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। लगता है आर्यांश की चोरी पकड़ी गई है, कि उसी ने शिव को दीवा के पास भेजा था। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, मुझे आपके अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है। अगले पार्ट पर मिलते हैं। सच कहूँ तो आज का पार्ट मैंने पूरे दिन बाहर रहने के बाद अभी रात के 10 बजे लिखना शुरू किया था, सिर्फ इसलिए कि मेरे दिए गए शेड्यूल में किसी तरह का गैप ना आए।